ओम शांति। हम सभी प्रतिदिन नित्य विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं और बाबा ने बताया है कि कर्म के बिना तो आत्मा रह ही नहीं सकती, यहाँ तक कि पलक झपकना भी कर्म है, श्वास लेना भी। यानी कि कर्म तो सदा जाने या अनजाने होते ही रहते हैं, वो कर्म दिखते भी हैं सबको, लेकिन कर्म तक आने के लिए वास्तव में एक सफर तय करना पड़ता है। और वो सफर जितना हमारा सुखदायी आनंददायक होगा उतना ही हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुखदायी होंगे। और वो कर्म ही हमें अल्टीमेटली कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाएंगे। तो ये कर्मों की यात्रा शुरू होती है वृत्ति से। वृत्ति, इसको मनोवृत्ति भी कहते हैं, बहुत सूक्ष्म चीज है। और जैसा नाम भी है मनोवृत्ति, यानी कि इसका वृत्ति का मन से बहुत गहरा संबंध है, मनोवृत्ति कहते हैं। और जब ये मनोवृत्ति हमारी बाहर मुखी होती है तो बाहर मुखी वृत्ति कहा जाता है, और इसके विपरीत अंतर्मुखी अगर हम होकर कोई भी ये वृत्ति के अंदर विचार चलते हैं तो वो अंतर्मुखी वृत्ति होती है। लेकिन दोनों में बहुत बहुत गहरा अंतर है रिजल्ट में, क्योंकि जो अंतर्मुखी वृत्ति होती है वो वायुमंडल को बनाती है, जबकि बाहर मुखी वृत्ति जो होती है वो वायुमंडल से प्रभावित होती है। वायुमंडल बाहर मुखी प्रवृत्ति को, वृत्ति को बनाता है। इसलिए यदि हमें इस यात्रा को बहुत आनंद से सफलता पूर्वक करना है, वृत्ति से कृति तक की यात्रा, तो पहला तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी वृत्ति कैसी है, अंतर्मुखी है या बाहरमुखी। और जब अंतर्मुखी वृत्ति की तरफ हम धीरे धीरे जाते हैं तो वो अंतर्मुखी वृत्ति हमारा मार्ग बहुत स्पष्ट हमें दिखाती जाती है। और जो बाबा कहता है कि अल्टीमेटली आपकी कौन सी वृत्ति होनी चाहिए, बेहद की वैराग वृत्ति होनी चाहिए, या उसे दूसरी भाषा में उपराम वृत्ति भी कह सकते हैं। कोई भी कर्म होता रहे, हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम उससे उपराम होकर चलते रहें, बेहद की वैराग्य वृत्ति जैसे हमारे अंदर आती जाती है उतना हम अपनी मंजिल के और निकट पहुंचते जाते हैं। तो इसलिए एक आवश्यकता तो ये है कि हम ये अपनी वृत्ति को निरंतर चेक करते रहे। जैसे संकल्पों के चेक करने के लिए भी बाबा ने बताया है ना, रोज उनकी दरबार लगाओ मन बुद्धि संस्कार की। इसी तरीके से उससे भी सूक्ष्म, और इसको हम बीच बीच में चेक कर सकते हैं अपने स्वप्नों से भी, और साथ ही साथ जो हमारे अंदर जो ऐसे संकल्प समय प्रति समय जो उठते हैं और जिनको हम समझते हैं कि इसे बदलने की आवश्यकता है, इसका मतलब वो उतनी ऊंची कैटेगरी के संकल्प नहीं है जिसको हम बदलने की आवश्यकता समझते हैं। और जब हमारा ध्यान इधर की तरफ होता जाता है तो हम धीरे धीरे अंतर्मुखी और उपराम देहत की वैराग वृत्ति की तरफ चलते चले जाते हैं। तो ये वृत्ति जो है बहुत सूक्ष्म चीज है, और इसीलिए इसका कई बार हम जैसे सबकॉन्शियस माइंड से भी इसकी तुलना कर लेते हैं। बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड जो संकल्प है, और जो चैतन्य मन हमारा विचार करता है जिसके आधार पर हम चलते हैं, और एक सबकॉन्शियस माइंड जो सूक्ष्म मन है। उधर जब वो कार्य करता है सूक्ष्म मन, जिसे वृत्ति की भी संज्ञा कई बार दे दी जाती है, तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है। बाबा ने एक बार बताया था कि जो अष्ट रतन होते हैं और जो 108 जो दूसरे हैं 100, उनमें मुख्य फर्क क्या है, वो क्यों 108 में आ गए और वो दूसरे क्यों 8 में चले गए। तो बाबा ने उसका उत्तर पहले दादियों से पूछा, फिर बाबा ने बताया कि जो वृत्ति है स्वप्न में भी उनकी वृत्ति जो है उनके नियंत्रण में रहती है। स्वप्न में भी मन की बात नहीं है, वृत्ति यानी उससे भी सूक्ष्म। तो स्वप्न पर भी जब हमारा पूरा अधिकार हो जाता है, तो वो बाबा ने बताया था वो अष्ट रत्नों में वो बच्चे आते हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं, हम सबकी भी इच्छा है कि पास विद ऑनर्स बने, अष्ट रत्नों में आए, तो उसके लिए ये इतनी सूक्ष्म हमें अपनी वृत्ति की चेकिंग हर पल करनी पड़ेगी। और वृत्ति तक तो तब पहुंचेंगे जब पहले कर्मों में चेकिंग होगी, वाणी में चेकिंग होगी, आदि आदि है। तो एक तो जब ये वृत्ति को हमें देखना है, दूसरा इसकी और चेकिंग कैसे होगी, जैसी वृत्ति होगी वैसे बाबा ने क्या बताया है, वाइब्रेशंस बनते हैं। वाइब्रेशन होते हैं ना, और ये वाइब्रेशन वैसे तो देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी विज्ञान ने उसको नापने की भी विधि बनाई हुई है। जैसे विज्ञान में एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, यू शेप का होता है और वाई शेप का, और उसको अगर थोड़ा सा वहीं पर टच करें वो वाइब्रेट करता है और आवाज, उसकी वाइब्रेशन की आवाज आती है। लेकिन ब्यूटी ये है कि उसको दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के पास ले जाओ तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है, टच नहीं करना कराया जाता। इतनी दूरी पर भी होगी तो इसके वाइब्रेशन से वो भी वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि वाइब्रेशन को कोई स्थूल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही बात बाबा कहते हैं कि वृत्ति से वायु ये वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और इसीलिए जैसे ही हम कोई भी वाइब्रेशन जिस व्यक्ति के कैच करते हैं तो वो वाइब्रेशन से पता चलता है कि उस व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है। जो अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमें लोगों को अनुभव होता है, याद है कि जब साकार बाबा के पास हम लोग जाते थे तो दूर से ही ऐसा खिंचाव होने लगता था, मैग्नेटिक पुल जैसे चुंबक खींचता है ऐसे ही, क्योंकि बाबा की वृत्ति, बाबा के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे, शक्तिशाली थे कि किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते थे, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो इसीलिए वृत्ति से वाइब्रेशन ये होते हैं जो ट्यूनिंग फॉर्क का जैसे बताया, और ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस जो हैं वो फिर वायुमंडल तैयार करते हैं। स्थूल में हम लोगों को सब इसके अनुभव हैं, कैसे कि कभी मानो हम कोई पार्टी में जा रहे हैं लौकिक रीति से, जब लौकिक में तो अनुभव होगा मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी या कोई भी, बहुत आनंद का वातावरण है। क्यों है? क्योंकि सभी के वाइब्रेशन उधर संगठित हैं। और इसके विपरीत अगर कोई ऐसे डेथ पर किसी कर जाते हैं, कहीं क्रिमेशन ग्राउंड पर जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन कैसे भयानक जैसे होते हैं, बहुत साइलेंस होगी चाहे, लेकिन वो भय मिश्रित साइलेंस होती है। तो इसीलिए वायुमंडल भी वैसा बनता है, इसीलिए मधुबन में भी बार बार लोग आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं बाबा के बच्चे भी, वो भी बाल ब्रह्मचारी और पवित्र हैं, योग का वातावरण है, नित्य सुबह से लेकर रात्रि तक वैसा वायुमंडल रहता है, तो इस कारण से वो सबको आकर्षित करता है। तो इसीलिए ये वृत्ति से जो शुरू हुई और खुद ही हमें महसूस होगा वाइब्रेशन, दूसरी तरफ तो बाद में पहले हमें खुद ही बहुत, अगर हमारी वृत्ति बहुत पॉजिटिव होगी तो बहुत खुशी का, आनंद का अनुभव होगा, और वो आनंद का अनुभव जो है बाबा कहता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन में जब वो आनंद होगा तो फेस, चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी बाबा कहता है, उसके साथ ही साथ भ्रकुटी के अंदर भी एक चमक होगी, नैनों के अंदर रूहानियत होगी। ये जितनी बातें बाबा ने बताई हैं ये सब हमारे अंदर की वृत्ति का रिफ्लेक्शन है, जो स्थूल रिफ्लेक्शन चेहरे पर होता है। तो ये यात्रा, इसीलिए बाबा कहता है अगर ये होगा तभी दुनिया को ये कहेगी, अरे ये तो बिल्कुल दुनिया से अलग हैं, इनको क्या मिला है ऐसा, चेहरे पर सदा खुशी आनंद है इनके, और वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर की वृत्ति का रिफ्लेक्शन ही है। और जब ये होता चला जाता है तो वायुमंडल बन जाता है, और इसका उदाहरण तो हमें शुरू से मिलता है द्वापर युग से, कि सन्यासी आदि भी होते हैं तो बस ऐसा उनके अंदर तपस्या में लीन रहते हैं तो उनकी ऐसा वाइब्रेशंस होते हैं चारों तरफ, हिंसक प्राणी भी आए वो भी अहिंसक होके बैठ जाते हैं, और वैसा ही उनका प्रकृति पर भी प्रभाव होता है, और ये तो हम लोगों ने सुना भी है प्रकृति पर प्रभाव, तो यानी कि उस पर प्रभाव, तानसेन आदि होते थे जब राग मल्हार निकालते थे, तो ऐसे ये पहले अंदर के वृत्ति होती है, फिर उनसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजता है, उसके भी वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन, वो मिलके उन वाइब्रेशन से मैच कर जाते हैं जो प्रकृति के वाइब्रेशंस हैं, और फिर बरसात होने लगती है। रागमलार है, राग दीपक है, तो दीपक राग से दीपक जल जाते थे। इतना प्रकृति के को उन्होंने वशीभूत किया हुआ था, और वो हमारी आपकी ही यादगार है। प्रकृति हमारे संपूर्ण वश में रहती है, क्योंकि हम भी जो होते हैं सतो प्रधान होते हैं सतयुग त्रेता में, और ये प्रकृति भी वो हमारी रचना है। कई बार बाबा कहते हैं वो भी इसी कारण से सतो प्रधान होती है, बहुत सुखदायी होती है। तो ये जो है ये फिर हमारी स्थिति को बनाता है। जितना जितना हम इन चीजों में ज्यादा रमण करेंगे, फिर हमारी वैसी स्मृति होती जाती है, ज्यादा याद भी उसकी आती है ना। जिन चीजों में जिस वातावरण में व्यक्ति ज्यादा रहता है, वही चीज बार बार याद आएगी, स्मृति भी वैसी आएगी। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले आके ये चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, और सूक्ष्म पे तुरंत नियंत्रण नहीं हो पाता, तो इसीलिए बाबा ने पहले हमारी स्मृति को परिवर्तन किया। क्या स्मृति को परिवर्तन किया? तुम देह नहीं आत्मा हो, ये सबसे पहली स्मृति को। ये जो देहधारी हैं, ये एक जन्म के हैं, पर वास्तव में आत्मा का सच्चा पिता तो परमात्मा है। जितनी स्मृतियां हैं, और ये स्मृति के परिवर्तन से धीरे धीरे क्या होता है, जब ये आदत हो जाती है, तो फिर आपदा को भी खेल के रूप में हम देखने लगते हैं। आएगी आपदा, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, या बहुत गर्मी होगी, अति प्राकृतिक आपदाएं भी, लेकिन वो भी खेल के रूप में अनुभव होंगी। ड्रामा का ये खेल है, और ये जब खेल के रूप में अनुभव होंगी, तो वो हमारे दुख का कारण कभी नहीं बन सकती। तो स्मृति जो है वो हमारी परिवर्तित होती रहती है, और ये लौकिक में भी बहुत अनेकों उदाहरण हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी भी मिस ना करो। क्यों? क्योंकि मुरली में हमेशा कोई ना कोई, हमें ही 50 साल से ज्यादा हो गए, और हर बार रोज की मुरली में लगता है अरे ये पॉइंट तो जैसे पहली बार सुन रहे हैं, पहले सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि मुरली सुनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बुद्धि टोटल का टोटल उस समय मुरली में रहे, बुद्धि भाग जाती है, तो इसीलिए वो मुरली की पॉइंट मिस हो जाती है। तभी दादियां भी कहती थी हम तीन तीन चार चार पांच पांच बार मुरली पढ़ते हैं, और दादियां भी ये कहते हैं कि आप सब हम सब बच्चों को भी केवल एक बार मुरली सुनने से नहीं होगा बे, लेकिन उससे दूसरी बार तीसरी बार जब तक पढ़ेंगे नहीं, रिपीट नहीं होंगे, तो किस वक्त कौन सी पॉइंट टच कर जाए वो ड्रामा में निश्चित है। जैसे लौकिक रीति से कहते हैं सूरदास का, हाँ बस उसके मन में बहुत विकारों के भी विचार आते थे, तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली और सोचा आंखों से जब मैं देखता हूँ तो ये विचार आते हैं, लेकिन आंख फोड़ने के बाद भी उसने जो भी रचनाएं की, बहुत उन रचनाओं से झलकता है कि अभी भी बहुत उसके मन में यही विचार आते रहे। और इसलिए मन आंखों का दोष नहीं है, बल्कि ये मन का दोष है, हमारी वृत्ति का दोष है। तो इसलिए आवश्यकता ये मन को बदलने की है, स्थूल आंखों को फोड़ने की नहीं है। इसी तरह तुलसीदास का था, उसको भी जब अपनी युगल को वो मायके गई हुई थी, गया और सांप को रस्सी समझ के चढ़ा, तो उसको भी जब वहां से प्रताड़ना मिली पत्नी की तरफ से, तो वो प्रताड़ना ने उसे बदल दिया। नहीं तो पत्नी तो हमेशा ही कहती थी, हमेशा साथ में थी, कई बार बोला, लेकिन एक बार का हिट। तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी पॉइंट किस वक्त हमें हिट करेगी, लेकिन अगर हमने वो परिवर्तन रखा उस रेगुलरिटी का, तो इसी तरह कभी भरत हरि होके गए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही सब राजापन का छोड़ दिया, वैराग आया। लेकिन वैराग तो बहुत आया। एक बार ऐसी वो चांदनी रात में जा रहे थे, सड़क पर कोई चमकती हुई चीज देखी तो उन्होंने सोचा एकदम तुरंत ही पुराना संस्कार और वही वृत्ति उनके, उन्होंने उसे उठाने की कोशिश करी तो वो कोई और चीज नहीं, वो किसी ने पान की पीक थूकी हुई थी और वो चमक रही थी जो पान में भी वो लगा होता है। तो बस उनका हृदय एकदम भर गया वितृष्णा से, और कि अरे मैंने इतना सारा राजबाग छोड़ा, सब संसार, और इस चीज पर मेरी बुद्धि गई। और वो उनके परिवर्तन का क्षण था। ऐसे ही हम सबके भी परिवर्तन का कोई क्षण है, लेकिन हमें ढूंढना है। और वो सिर्फ मुरली से ही मिलेगा कि मुरली कभी भी मिस ना हो। अगर मिस हो भी जाती है तो उसे हम पढ़े। तो ये स्मृति के बाद फिर ये आती है वाणी भी, दृष्टि। ये सबसे बड़ी बात है। बाबा भी कहता है ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये दृष्टि में हमें, क्योंकि इसीलिए हमारी लास्ट स्थिति भी बाबा ने जो बताई है कौन सी है, साक्षी दृष्टा। तो हमें दृष्टि और दृष्टा का भी अंतर स्पष्ट हो। दृष्टि ये है हमारी आंख, खिड़की, जड़ चीज, लेकिन दृष्टा आत्मा है। तो दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देखता है और बाहर के दृश्य देखता है। तो दृष्टा दृष्टि के द्वारा बाहर के दृश्य देखता है, और उस दृश्य को जब वो इंटरप्रेट करता है, या दृश्य उसे अच्छा या खराब लगता है, किस आधार पर, क्योंकि जैसा उसका दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उसे सब चीज पॉजिटिव ही नजर आएगी, एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा तो उसे सब चीज नेगेटिव ही नजर आएगी। तो इसीलिए, और उसके आधार पर ही फिर जीवन में दृष्टांत बनते हैं, इतिहास लिखा जाता है। तो हम सब भी इतिहास लिखने वाले हैं, इतिहास पढ़ने वाले द्वापर युग से केवल नहीं है, बल्कि इतिहास हम लिख रहे हैं इस समय। तो वो हमें अपने को समझना चाहिए, हम कितनी महान आत्माएं हैं। महान आत्माएं ही इतिहास लिखती हैं, और इतिहास पढ़ने की बात नहीं, दूसरे फिर उनके फॉलोअर्स, उनकी प्रजा, वो इतिहास पढ़ती है। और फिर इस प्रकार से जैसी फिर दृष्टि होती है, और फिर दृष्टि के आधार पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो सृष्टि हमें जब दिखेगी तो वैसी हमारी फिर वाणी होगी, और जैसी फिर वाणी होगी हमारी, और वो वाणी भी कोई मधुर होती है। इसीलिए वाणी के ऊपर तो बहुत कहा गया है, बहुत कुछ लिखा भी गया है, और हम सब का भी अनुभव है कि जिस वाणी ही व्यक्ति को तख्ता दिला देती है, और वाणी ही तख्त दिला देती है, वाणी ही फांसी पर चढ़ा देती है, वाणी ही ऊंच पद पर प्राप्त करा देती है। और वाणी के साथ साथ फिर अंत में आती है कृति। कृति माने कर्म। तो इतनी यात्रा करके है, कहने के लिए भी इतना थोड़ा समय लग गया, लेकिन एक सेकंड में यहां से यहां की यात्रा रोज पूरी हो जाती है, और अनेकों बार, हजारों लाखों बार ये यात्रा पूरी हो जाती है। और कृति वैसा ही कर्म करते हैं। तो ये कर्म जो है, बाबा कहता है ये कृति उपराम वृत्ति से होकर के कर्म करते हैं जब, तो फिर अल्टीमेटली हम जो हमारी अंतमते सो गति है उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये वृत्ति को, मंशा को साधारण न समझें। ये ही बीज है। अगर बीज ही खराब हुआ तो वृक्ष तो खराब होगा, उसके फल भी साधारण होंगे नहीं होंगे। तो वृत्ति को हमें समय प्रति समय ये चेक करना बहुत आवश्यक है। और वृत्ति को जितना हम रोज चेक करेंगे, और उसका आधार मुरली है, और मुरली के आधार पर हम रोज अपने को आगे बढ़ाते चले, चेक करते चलें मुरली को दो बार तीन बार, जब भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा अरे ये बात तो अभी पहली बार जब मैंने मुरली में पढ़ी उस वक्त भी मेरे ख्याल में नहीं आई, जो अभी तीसरी बार में आ रही है। तो इस तरह करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति।
की करामा से कर्मों को सजाना है। बदला नहीं है लेना जिससे बदल के हमको दिखाना है। कर्म योग की करामत से कर्मों को सजाना है। प्रभु की किसी पुकार पर जो होगा बलिहार, जो होगा बलिहार करेगा तो पाएगा। बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार सुहन सच गाएगा। मन बदलो चिंतन बदलो,
मन बदलो
चिंतन बदलो,
मन बदलो
चिंतन बदलो,
मन बदलो
चिंतन बदलो।